नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलदार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पद चाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पद चाप गूंजे, मौत की सुनसान सुनी वादियों में फिर, कि नूतन सर्जना के राग भर दे, शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर, दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं, सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है, यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशाले जीत की जलती रही है, पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है, समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है, नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।
ओम शांति। एक महान योगी किसी राज्य में रहता था और उसके पास बहुत सी सिद्धियां थी। वहां के राजा ने एक बार उसे बुलाया और कहा कि यदि तुम जमीन के अंदर 6 मास रहकर दिखाओ तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा। और राजा को पता था कि ये जो योगी है उसे घोड़े बहुत पसंद है, और राजा का जो सबसे अच्छा घोड़ा था, राजा ने कहा कि मैं वो घोड़ा तुमको दे दूंगा, परंतु 6 मास तक जमीन के अंदर तुमको दफन कर दिया जाएगा, खाना पीना कुछ नहीं, उसमें तुमको रहना है। वो योगी हाँ कर देता है और वो जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, परंतु फिर राज्य पर आक्रमण हो जाता है, बहुत सारी हलचल हो जाती है और लोग भूल जाते हैं उसके बारे में, और वो 6 मास की जगह 10 साल तक उसी जमीन में गड़ा रह जाता है। और बहुत सी घटनाएं राज्य में होती है, फिर धीरे धीरे राज्य फिर स्थिर होता है, और फिर किसी को याद आता है कि उस योगी का क्या हुआ, वो योगी तो जमीन के नीचे गाड़ दिया गया है। फिर सबके मन में आता है कि उसको निकालो वहां से, तो जमीन खोदी जाती है और दिखता है वो है वहां। पूर्व निर्धारित जो मंत्र था उसके कान में फूका जाता है और उसकी चेतना लौट आती है और वो आंखें खोलता है। और आंखें खोलते ही सबसे पहले महावाक्य उच्चारण करता है, मेरा घोड़ा कहाँ है। 10 साल का योग और 10 साल की साधना, भगवान का चिंतन नहीं था, घोड़े का चिंतन चल रहा था। हाँ, फिर वो रहा कैसे, अपने श्वास को उसने रोक कैसे दिया, वो टेक्निक है, वो स्किल है। अगर चाहे तो कोई स्किल को प्राप्त कर सकता है, वो एक विधि है, एक प्रैक्टिस है श्वास की, जिसमें योगी श्वास को भी रोक देता है। फिर उसे उन 5 तत्वों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। परंतु वो कर क्या रहा था अंदर, महत्वपूर्ण ये है। धर्म वर्तमान समय कहा जाता है एक आर्टिफिशियल लिम जैसा हो गया है, कृत्रिम पैर। पेशेंट को लगाया जाता है जयपुर फुट, जिनके पैर काट दिए जाते हैं किसी कारण से, खराब हो गए, तो उन्हें नया पैर लगाया जाता है कृत्रिम, जिसमें ना कोई संवेदना होती है, ना ऊष्मा होती है, ना गर्माहट। झूठा पैर। ईश्वरीय मार्ग पर चलना अर्थात सच्चाई से, ईश्वरीय मार्ग पर चलना अर्थात अनुभव, ईश्वरीय मार्ग पर चलना अर्थात जो कुछ किया जाए उन सब में प्रभु प्रेम समाया हो। नहीं तो ये सब करते हुए भी केवल शरीर से कर्म हो रहे, मन तो संसार में लगा है, हमारी स्थिति भी इसी योगी जैसी रहेगी। एक योगी भी सारे कर्म करता है संसारिक साधारण से, एक संसारी व्यक्ति भी सारे कर्म करता है, पर कॉन्शियसनेस में अंतर है दोनों के। एक की बुद्धि में संसार है, झाड़ू दोनों लगा रहे, पर एक की बुद्धि में संसार, एक की बुद्धि में ईश्वर। भोजन दोनों खा रहे हैं, पर एक की बुद्धि में परमात्मा है, एक की बुद्धि में भूख है, शरीर है, प्यास है, वासना है। तो यज्ञ इतिहास का ये कारवा 2007 से 2022 तक कल हमने देखा, दादी जान की मुख्य प्रशासिका है। और इससे पहले कि हम इस दौर में पहुंचे, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, और हम गए और कल हमने कुछ घटनाएं देखी, कुछ आदतें देखी, कुछ किस्से देखे, कुछ कहानियां देखी जो एक योगी के जीवन में हुई, और उन कहानियों के आधार से, उन किस्सों के आधार से उस योगी ने अपने जीवन की कुछ धारणाएं बनाई या कुछ जीवन की आदतें बनाई, हैबिट्स, और उन्हीं आदतों ने उसे इतना मजबूत और इतना पक्का कर दिया कि वो परमात्मा का माध्यम बनी और विश्व में इतनी बड़ी सेवा हुई। क्योंकि भीतर क्या थी, सच्चाई, झूठ नहीं। नैनों के दर्पण में बाबा तुझको सदा ही देखूं, क्या से क्या बनाते हो हर पल यही मैं सोचूं, मनामन में अब तो बाबा खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर। मन गहराई में और भीतर से एक परमात्मा की ओर लगा रहे, माशुक 2022, और हम सब हैं आशिक 2022। तुमने ही चमकाया बाबा तकदीर का सितारा, नाज करूं मैं भाग्य पे अपने पाके तेरा सहारा, तेरी निगाहों में हमने देखी स्वर्णिम युग की भोर, तेरी एक नजर में हमने तो जन्मों का सुख पाए, तेरी ही महिमा के बाबा गीत सदा हम गाए, पाके अनोखा प्यार तेरा हम हो गए भाव विभोर, स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर। तो कल हमने कितनी बातें देखी थी, 17, आज कुछ और बातें देखेंगे। भट्टी का आज का 103 दिन, 5 दिन के बाद छुट्टी। एक एक दिन सत्संग का दिन हो, एक एक दिन श्रेष्ठ संग का दिन हो। आज की मुरली में भी कहा है बाबा, सुबह की साकार मुरली, संग नहीं करते तो क्या होता है, क्या हो जाता है। तीन प्रकार के पुरुषार्थी है, इज्जत मिट्टी में मिल जाती है, तीन प्रकार के पुरुषार्थी है, सतो रजो और तमो, और तमो पुरुषार्थी क्या बन जाते हैं, भल साथ रहो स्त्री पुरुष, आग लगी तो खलास, संग की संभाल करो, संग की संभाल करो। कितनी बार मुरलियों में आता है, और कल भी हमने देखा कि दादी ने इस बात का बहुत ध्यान रखा, संग की संभाल, क्योंकि संग का असर पड़ता है सुबह के साकार महावाक्य, संग का असर पड़ता है। तो नेक्स्ट स्टोरी या नेक्स्ट आदत, ये हमने स्वयं अनुभव की है। एक बार हम दादी के पास गए थे तो वहां कोई नहीं था, दादी सो रही थी, तो बहनों ने कहा आप बैठे रहो, दादी उठेगी तो बात करेगी, और सब चले गए। तो हम बैठे रहे बैठे रहे, कितना देर हो गया, और फिर दादी सोई थी, हम वहीं बैठे थे, और दादी ने आंखें खोली, और खोलते ही फर्स्ट रिस्पॉन्स स्माइल। ये एक नई बात थी, कोई आंखें खोलते ही हंसता है क्या? आंख खोली और स्माइल, अर्थात वो नींद कैसी होगी अंदर की, स्माइल वाली, स्माइल ड्रीम। आंख खोलना और तुरंत हंसना, जैसे छोटा सा बालक निरागस। नेक्स्ट, दादी को बाबा मिलन में जाना था और 6 बज रहे थे, तो तैयार वगैरह हो गए और निकले, और जैसे ही निकले सामने आईना था, आईना के सामने रुक गए, और दृष्टि, किसको दृष्टि, खुद को, स्वदृष्टि, खुद को ही दृष्टि देने लगे। हमने पूछा आप दादी किसको दृष्टि दे रहे हो, बोले दे नहीं रही हूं, ले रही हूं। किससे, खुद से। इसको इंग्लिश में कहते हैं मिरर मेडिटेशन, आधुनिक भाषा, आईने के सामने बैठो और हाथ में वो देखो, खुद से ही दृष्टि लो। और साइंस कहता है स्पिरिचुअल साइंस कि जब आप ऐसा करोगे और रोज ये अभ्यास होगा आधा घंटा, आईने के सामने बैठ जाओ और केवल भ्रुकुटी में देखो, धीरे 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 ये जो चेहरा है ये हटने लगेगा, ये जो चेहरा है ये नहीं रहेगा, फिर धीरे धीरे केवल आत्मा। और लंबा समय यदि यह अभ्यास हो तो योगी को अपने पूर्व जन्म के चेहरे दिखाई देने लगते हैं, अपने अंदर क्या चल रहा है वो दिखाई देने लगता है, क्योंकि सारी गड़बड़ आत्मा में चल रही है, हमारे ही अंदर चल रही है, बाहर सब ठीक ठाक है पर हम ठीक नहीं है, इसलिए बाहर ठीक नहीं दिखाई देता। तो ये कितना अच्छा अभ्यास है, मिरर मेडिटेशन किया है किसी ने, इसको आज से करना है। बैठो आईने के सामने, लाइफ साइज मिरर, बड़ा वाला मिरर, चेयर लेके बैठ जाओ, अलमारी होती है ना अलमारी के सामने चेयर लेके बैठो, अलार्म सेट कर दो आधा घंटा, हिलना नहीं है, और फिर कहाँ देखेंगे, केवल ब्रुकुटी के वहां देखना है बस। अगर और ज्यादा कुछ उसको इफेक्टिव करना है तो बिंदी लगा दो वहां पर और अपने आप को फिर एडजस्ट करो उस बिंदी में, ताकि वो बिंदी यहाँ आए, या तो कुछ वाइट यही बिंदी लगाओ या वहां बिंदी लगाओ, और केवल उस बिंदु को, या तो ऐसे स्टार वाली बिंदी आती है ना कोई स्टार वाली, वो लगा दो और उसको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। आज की मुरली, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, आत्मा तुम्हारे गले का हार है, आत्मा की शांति आत्मा के अंदर खोई हुई, तुमको सन्यासियों के पास कैसे शांति मिल सकती है, वो बाहर नहीं वो भीतर है। बस संकल्प करो एक ही कि मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शांत हो रही हूं, मैं शांत हो रही हूं, मैं शांत हो रही हूं, 100 बार। आत्मा में जो अशांति है, जो हलचल चल रही है, बेचैनी होती है अचानक से मूड चेंजेस होते हैं, वो सब स्थिर होने लगेगा धीरे 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 धीरे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, बस रिपीट करते जाओ मिरर मेडिटेशन, और लंबा समय करते रहोगे तो ये चेहरा हटेगा और पुराने दिखने लगेंगे, और उसको भी लंबा समय करोगे तो सतयुग वाले दिखने लगेंगे, कुछ तो होगा फिर, क्योंकि सारा रिकॉर्डिंग इसमें है और आत्मा ही शरीर का निर्माण भी करती है, क्यों कोई अपंग पैदा होता है और फिर हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, हिसाब किताब, आत्मा ने पाप किया है इसलिए शरीर पर यह असर, अर्थात आत्मा सूक्ष्म शरीर का निर्माण करती है, ये साइंस है, स्पिरिचुअल एम्ब्रियोलॉजी, स्पिरिचुअल जेनेटिक्स, कैसे सब होता है बड़ा जटिल है, परंतु आत्मा ने विकर्म किए इसलिए जैसे ही दूसरे गर्भ में जाती है वहां पर शरीर का निर्माण आत्मा ही करती है, और पिछले जन्म के कुछ गहरे संस्कार लेकर उतरती है इस शरीर में। अगर गहरी चोट हो, गहरी उदासी हो, तो वो उस जन्म की उदासी भी इस जन्म में चलती है, जबकि इस जन्म में ऐसी कोई इवेंट, कोई घटना नहीं हुई है। इसके लिए साइकोलॉजिस्ट एक टर्म यूज करते हैं, इंडोजीनियस डिप्रेशन, इंडोजीनियस, उसका कोई कारण इस जन्म में नहीं दिखाई दे रहा है, किसी और जन्म में उसका कारण। तो स्टोरी नंबर 2 आज की, क्या करेंगे, आईना दिखा कि रुक जाना, लोग आईना रुकते तो अपना बाल ठीक करते, ऐसे करते हैं ना, जो बाइक होती है उसके आईने में क्या करते हैं, एक बार जाते जाते ठीक तो है ना, हम भी हीरो एक्टर्स हैं, और जो फिल्म के हीरो एक्टर्स और एक्ट्रेस होते हैं, जैसे ही शूटिंग चल रही होती है और बीच का टाइम होता है तो आ जाता है मेकअप वाला, बीच बीच में मेकअप, तो ये स्पिरिचुअल ब्यूटी पार्लर है, इसमें भी बीच बीच में मेकअप करना है कि मैं कैसे दिख रहा हूं, मैं अर्थात चेहरा नहीं आत्मा, स्पिरिचुअल मिरर, स्पिरिचुअल मिरर मेडिटेशन, ये दूसरा, तीसरा, जो इसके पहले भी हमने कभी सुनाया था कि दादी जब ठीक नहीं रहती थी तो एकदम डाउन, पर जैसी ठीक हो गई फिर कोई कंट्रोल नहीं किसी का उन पर। हम एक बार दिल्ली थे किसी कॉन्फ्रेंस में, बहुत पहले 2011, तो फोन आया कि जल्दी आ जाओ, दादी को बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पूरी रात कुछ कुछ होते रहा, तो सुबह फोन आया 3 बजे शायद, तो तुरंत वहां से फ्लाइट 4 या 5 बजे की, और यहाँ पहुंच गए 8 या 9 बजे तक, 9-10 बज गए। और जैसे ही वहां पहुंचे शांतिवन में और जाने लगे तो दादी वहां थी नहीं। हमने कहा दादी कहाँ? उधर वो डायमंड हॉल में क्लास चालू है। जैसे ही ठीक वैसे ही सेवाएं चालू। और ब्राह्मणों का हमने ये देखा है, यदि कोई बीमारी हो भी जाती है तो रिकवरी के लिए और सेवा में उपस्थित रहने के लिए बहुत लंबा पीरियड लगा देते हैं बीच में रेस्ट का। और यहाँ पूरी रात कुछ कुछ होता रहा, और जैसे ही सुबह ठीक सीधा क्लास। ये ज्ञान सुनाना ही दादी की एक दवा भी थी, वो जब सुनाती थी ना वो अपने आप ठीक हो जाती थी। तो ये भी एक हैबिट है। तो 17 आदतें हमने कल देखी थी, आज कुछ आदतें देखेंगी। तो ये कैसी आदत है? जैसे ही ठीक हो जाओ वैसे तुरंत सेवा में उपस्थित हो जाओ, लंबा समय रेस्ट में नहीं बिताना, नहीं तो रेस्ट रेस्ट रेस्ट, फिर रेस्ट इन पीस हो जाएगा, RIP। कोविड हो गया लोगों को, अभी तक कमजोरी गई नहीं। क्यों? उसका एक कारण था, वो होने के बाद एक्सरसाइज नहीं की। वो होने के बाद एक ही मन में संकल्प था कि हमें कमजोरी है, हमें कमजोरी है, हमसे चलना भी नहीं होता है। वो मन में कमजोरी ने घर कर लिया, डीप साइकोलॉजिकल वीकनेस। जैसे ही ठीक हो गया तुरंत चालू सेवाओं को, वो सेवा ही ठीक करेगी। तो ये कितनी अच्छी आदत है। नेक्स्ट, उसके बाद में जो भी दादी जानकी की क्लासेस है जो सुनते थे यहाँ पर, उस क्लासेस में एक चीज देखी होगी सबने कि उस एक क्लास में यदि ध्यान से सुनो कोई भी क्लास, अगर वो पूरी क्लास समझनी है तो उसके पहले 3-4 दिनों की जितनी मुरलियाँ थी वो उसका स्टडी चाहिए। क्योंकि उस एक क्लास में दादी के 3-4 दिनों की मुरलियाँ जो होती थी उसकी भिन्न भिन्न पॉइंट्स आ जाती थी। पकड़ना बड़ा मुश्किल था पर कि ये उस क्लास की है या इस क्लास की है। वो सहज एक ही क्लास में इतनी सारी पॉइंट्स रहती थी और वो सब मुरलियों की रहती थी। मतलब एक एक मुरली को कितनी गहराई से पढ़ी है। एक होता है मुरली पढ़ना, हो गया काम पूरा हुआ, और एक है इन्वॉल्वमेंट के साथ, विथ लव, विथ कमिटमेंट, विथ, नहीं तो हमारी स्थिति उस 10 साल जमीन के नीचे गड़े हुए योगी जैसी है। क्या सोच रहा है? घोड़ा घोड़ा घोड़ा। ट्रांस में है पर ट्रांस में भी घोड़े का चिंतन चल रहा है। घोड़ा योग, हॉर्स योगा, तो वो अवस्था ना। मुरली पढ़ना अर्थात उसको उन पॉइंट को एक्सट्रैक्ट करना वहां से, मुरली फिर हट जाए, वो पॉइंट रह जाए और उसको जब चाहे जहां चाहे जीवन दिनचर्या में अप्लाई करना, तो उसका कुछ फायदा है, नहीं तो नहीं। नहीं तो वो केवल वहां तक ही रह गया कि हमने मुरली सुन ली, हमने पढ़ ली, बस एक तृप्ति है, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं है। और कल भी सुनाया था मुरली पढ़ने का समय कौन सा है, अर्ली मॉर्निंग। क्योंकि आजकल जिस युग में हम रहते, इलेक्ट्रॉनिक एज, ये वो समय नहीं रहा 80s के, 90s से इलेक्ट्रॉनिक हो गई मुरली, सब जगह एक ही सम, एक ही दिन में एक ही मुरली सब जगह। 90s के पहले ये नहीं था, ये हमने इतिहास में देखा कि जैसे कंप्यूटर इन ब्रह्मा कुमारी, ये अपने आप में चैप्टर एक, तो ये 90s में आया। और वर्तमान में तो हर एक के हाथ में मोबाइल है और हर एक के पास मुरली है, तो मुरली पढ़ने का सबसे अच्छा समय है अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि सुबह की पढ़ी हुई बहुत ज्यादा ध्यान में रहती है, दिन में पढ़ो तो याद नहीं रहती है। इसके लिए सुबह सुबह पढ़ लो, और क्लास में सुनना वो एक रिवीजन होगी, एक बार खुद पढ़ा और फिर सुना, और वो जब सुनेंगे तो क्या हो जाएगी, जैसे कि छप जाएगी, फिर वो भूलेगा नहीं, फिर दिन भर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, दिन भर में केवल याद करना है उसको, क्या था क्या था क्या था, कैंसिल कर दो आज सुबह की साकार मुरली, ये लौकिक बर्थडे कैंसिल, शादी की एनिवर्सरी कैंसिल, बाबा सबके सामने क्यों सुनाया हमने हमारी कमजोरी, तो क्या तुमको छुपा के सुनाएंगे बाप, तो कौन सी आदत है ये, मुरली पढ़ने की, परंतु कैसे, बहुत एकाग्रता से, तपस्या अर्थात एकाग्रता, तपस्या अर्थात दृढ़ता, तपस्या अर्थात संकल्प, तपस्या अर्थात व्रत, तपस्या अर्थात प्रतिज्ञा, व्यर्थ से मुक्त होने की एक ही विधि है, कौन सी, ज्ञान चिंतन, नहीं तो यहां व्यर्थ के अंबार लगे पड़े हैं। तपस्या अर्थात व्यर्थ से मुक्त। नेक्स्ट, कई बार हम जाते थे तो देखते थे दादी पढ़ाई कर रही है, क्या पढ़ रही है, मैगजीन ज्ञानामृत, कभी वर्ल्ड रिन्यूअल, और ये लक्ष्य रखना है कि जो भी मैगजीन आती है, और विशेषतः ये मैगजीन, इसमें बहुत सारी कहानियां होती है, अनुभव होते हैं, ज्ञान की बातें होती है, लेख होते हैं, ब्लॉग, हर मास के 15 तारीख से पहले ज्ञानामृत उस मास का पढ़ के हो जाना चाहिए। टारगेट क्या है, 15th क्यों, क्योंकि कई सेंटरों पे ज्ञानामृत 10 तारीख तक पहुंचता है, एक हफ्ता दो हफ्ता लगते हैं, तो लक्ष्य रखना है कि 15 तक वो पूरा पढ़ के हो जाए। जब ये टारगेट ही रखा है तो क्या होगा, फिर टाइम इधर उधर नहीं जाएगा वेस्ट, नहीं तो दो व्यक्ति बैठते हैं तो कहां से बातें चालू होती है और कहां पहुंच जाती है पता ही नहीं चलता है, दोनों को भी नहीं पता चलता है। व्यर्थ में बहुत पावर है, बहुत पावर। तो दादी को हमने कई बार मैगजीन पढ़ते हुए देखा। नेक्स्ट, कई बार गए तो देखा कि दादी क्या कर रही है, ईमेल्स लेटर्स जो आए हैं उनको, उनका उत्तर दे रहे, बहन है वो पढ़ रही है और दादी को सुना रही है, दादी इस देश से इस बहन ने ये लिखा है क्या उत्तर दूँ, तो दादी उत्तर दे रही है। तो आए हुए लेटर्स, आए हुए ईमेल्स का उत्तर देना, जैसे बाबा क्या करते थे, पत्र लिखते थे उस समय, वो उस समय की बात थी, और अभी इलेक्ट्रॉनिक एज है, डिजिटल वर्ल्ड है, तो ये पर ये भी देखा गया है कि बहुत सारी चीजें जो आती है व्यर्थ होती है अधिकतर, और कईयों को प्रश्न आते रहते हैं इधर उधर से, तो ये देखना है कि किस प्रश्न का उत्तर देने जैसा है। और कुछ कुछ होते हैं जो रियल होते हैं, जेन्यून होते हैं, जिनका उत्तर वास्तव में आवश्यकता होती है, और अधिकतर जो होते हैं 95% वो क्या होते हैं, वही वही बातें रिपीट करते रहते हैं, उनको उत्तर नहीं चाहिए रहता है, उनको दोस्ती करनी होती है बस, उनको उत्तर से कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही मैसेजेस भेजते रहते हैं, भेजते रहते हैं नॉन स्टॉप, 100 मैसेजेस एक ही नंबर से रात भर, या फिर बाबा से जो खुद बातें करते हैं वो मैसेज के रूप में भेजते रहते, उसका कोई तुक नहीं, कोई अर्थ नहीं, ईमेल्स हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स, तो उसमें से खाली ये देखना है छांट के कि किस व्यक्ति को रियल आवश्यकता है। तो ये हो गई कितनी बातें, 6। पहले बताई स्लीपिंग, स्माइल, दूसरा बताया मिरर मेडिटेशन, तीसरा बताया जैसे ही ठीक हो जाओ तुरंत सेवा में चालू कर दो, ये मत कि मुझे रेस्ट दे दो 10 दिन का भी, उसके बाद देखता हूँ आराम करने के बाद। सर्टिफिकेट 10 डेज रेस्ट, बीमारी थी दो दिन की और सर्टिफिकेट चाहिए 15 दिन का। आप लिख के दे दो ऑफिस में, छुट्टी मिल जाएगी अगर 15 दिन का दे दिया तो। उसके बाद में मुरलियों की पॉइंट्स, एसॉर्टेड पॉइंट्स, अंग्रेजी में एक शब्द है एसॉर्टेड पॉइंट्स, एसॉर्टेड अर्थात रैंडम, कहीं से भी कोई भी पॉइंट हम बोल सके, इधर से ये ले लिया उधर से वो ले लिया। अगर क्लास भी कराना हो, सबको कराने पड़ते हैं सेंटरों पर जगह जगह पर, तो हमारी एक क्लास में उस हफ्ते की जितनी मुरलियाँ है उसकी सारी पॉइंट्स आ जानी चाहिए। पर ये संकल्प करके नहीं, मतलब याद करके नहीं होगा कि अभी मैं ये क्लास में ये पॉइंट बोलूँगा, ऐसे नहीं होता है। सारी पॉइंट्स याद रखो, समय पर अपने आप जिसको जहाँ फिट होना है वो फिट हो जाती है अपने आप। कब तक याद रखोगे और क्या क्या याद रखोगे? एसॉर्टेड पॉइंट्स, जो मुख्य मुख्य है उसको वहां से खींच के निकाल लो और रखो अंदर, टाइम पर यूज करो। तो ये हो गई, और फिर ज्ञानामृत पढ़ना और लेटर्स को आंसर करना, ईमेल्स को आंसर करना। अब चलते हैं वापस इतिहास में। कल हम इतिहास में थे तो कल हम देख रहे थे कि क्या क्या हुआ दादी के इतिहास में, दादी के जीवन में, लौकिक में। तो कल हमने देखा कि दादी के युगल नवल राय, उसको कैसे शक रहता था हमेशा, कलकत्ता गया ही नहीं डेढ़ साल, क्योंकि महत्वपूर्ण काम करना था इधर। कौन सा? निगरानी का, कि कहीं ये भाग ना जाए ओम मंडली में। तो एक बार फिर बाद में उसको जब यकीन हो गया कि इसने छोड़ दिया है दादा लेखराज को, तो फिर निश्चिंत होके कोलकाता चला गया। पर उसके भी पहले एक कहानी है कि एक बार हमने ये कल देखा कि बाबा कराची में है क्लिफ्टन में, और वहाँ कुछ बंगले दे दिए हैं चंद्रमणि दादी, शांतामणि दादी के परिवार को, और वैसा ही एक बंगला दादी जानकी के परिवार को भी देती है। पर दादी तो इधर है अपने ससुर घर पति के पास। तो एक बार उसके माता पिता यहाँ आते घर, और दादी अपने युगल से कहती है कि मुझे अपने पिताजी से मिलना है। तो वो पिताजी से मिलने जाती है, पति कहता है जाओ। रात को 11 बज जाते हैं, और फिर वहाँ जाने के बाद दादी अपने लौकिक बाप से कहती है कि मुझे बाबा के पास ले चलो। कितने बजे? रात को 11 बजे। और बाबा का जो घर है और पति का जो घर है उसी रास्ते में। तो दादी कहती है कि वो घोड़ा गाड़ी में बैठकर घूंघट पूरा ओढ़ के छिपाए हुए उसी रास्ते से गुजरी बाबा से मिलने 11 बजे रात को, और वहां जाके देखा, पहुंची तो सबको देखा कि सब लोग वाइट पहने हुए हैं, जैसे सब फरिश्ते नजर आ रहे हैं। और फिर दादी को लगा कि मैं तो जैसे नरक में हूं और ये लोग स्वर्ग में हैं। इसको कहते हैं पावर ऑफ रियलाइजेशन, ये रियलाइज करना कि मैं गिर चुका हूं, मैं नीचे हूं, मैं नरक में हूं, और ये आत्माएं मुझसे आगे है, मुझसे ऊपर उठ चुकी है। ये अहंकार पर आघात है, कोई मानता नहीं है ऐसा। हर एक कहता है कि तुम नरक में हो, हम ऊंचे हैं। पर दादी का क्या रियलाइजेशन था कि मैं तो नरक में हूं और ये लोग मेरे से कितने आगे हैं। इसलिए इससे क्या बढ़ती है? लगन। और ये रियलाइजेशन की आदत हमेशा रही दादी, इसीलिए पूरा जीवन जानकी दादी का त्याग से भरा रहा, तप से भरा रहा। क्योंकि निरंतर एक रियलाइजेशन रहा कि मैं पीछे हूँ, मैं लेट हूँ, मुझे आगे जाना है और पुरुषार्थ करना है। ये एक कहानी। नेक्स्ट। और फिर दादी वहाँ बहुत रोई, बाबा ने बहुत प्यार किया, शक्ति भरी। अगला, दादी की जो सास थी उसने शरीर छोड़ा, तो फिर दादी ने यहाँ जब देखा तो सब लोग वाइट पहने हुए थे और दादी की बहुत इच्छा थी कि मैं भी वाइट ही पहनूं, पर उस समय रस्म नहीं है ऐसी शादीशुदा। फिर जो सास थी उसने शरीर छोड़ा तो इसलिए दादी ने वाइट पहनना चालू किया और किसी ने कुछ बोला भी नहीं क्योंकि मदर इन लॉ ने शरीर छोड़ा है, पर असली बात कुछ और थी। दादी कहती है उसके बाद फिर हमेशा से वही पहना, एक बार वाइट पहन लिया अब उस कलर की दुनिया में मैं कभी नहीं गई, एक बार वाइट पहन लिया उसके बाद में कलर की दुनिया को टाटा बाय बाय। तो आत्मा को यदि गहरी कोई इच्छा होती है तो वो पूरी तो हो ही जाती है। गहरी से गहरी इच्छा अगर होगी तो वो पूरी होगी जरूर। अंग्रेजी में बुक है द एल्केमिस्ट। उस पूरी बुक का एक ही सार है, उसका नाम क्या होता है वो हीरो ट्रिवियागो, हाँ शेफर्ड का नाम, उस हीरो का नाम, हाँ। तो उसमें एक ही चीज है पूरा सार, यदि तुम गहराई से कोई चीज चाहोगे, गहराई से सच्चे दिल से, द एंटायर यूनिवर्स विल कॉन्स्पायर टू मेक इट कम ट्रू। सारा सृष्टि षड्यंत्र करेगी, षड्यंत्र तुम्हारी वो इच्छा पूरी करने के लिए। इफ यू डिजायर समथिंग डीपली, द एंटायर यूनिवर्स विल कॉन्स्पायर टू मेक इट कम ट्रू। ऑथर का नाम नहीं, हीरो का नाम, वो तो पॉल कोइलो है, वो तो है। तो लुसियानो, अपने आप इच्छा पूरी होगी। फिर दोनों, आसुरी इच्छा भी और ईश्वरी इच्छा भी, कोई भी इच्छा हो। और इस यज्ञ को एक वरदान है, इस यज्ञ में जो भी आएगा उसे मनोवांछित फल प्राप्त होगा। किसको इच्छा है कि बहुत प्रसिद्ध हो जाऊं, उसकी वो भी इच्छा पूरी हो जाएगी। किसको इच्छा है कि मुझे बहुत कुछ मिल जाए माल, वो भी मिल जाएगा। जिसको जो चाहिए वो उसको मिलेगा। जो जे वांछी लतो ते लाहो प्राणिजात। तो वाइट ड्रेस, वाइट ड्रेस में एक क्लास पूरी हुई थी इसके ऊपर, कम से कम 21 फायदे क्या क्या होता है उसमें। नेक्स्ट, दादी कहती है कि मैंने एक बार अपने लौकिक बाप को घर बुलाया और जो मेरे गहने थे उसको डिवाइड किया, पियर घर से और ससुर घर के गहने, और जो मेरे अपने गहने थे, अपने बाप के घर वाले, वो गहनों का एक बॉक्स बनाया और कहा कि इस बॉक्स को जाकर बाबा को दे दो। जो मेरे अपने गहने, ससुर के नहीं, पियर घर के जो गहने हैं वो दो इसमें डिवाइड किए और इस बॉक्स को कहाँ करो, क्या करो, बाबा को जाके दे दो। ये बीज है जैसे, वो जो विश्व में सेवा की फिर बाद में। दादू को, बाप दादी को बहुत खुशी होती थी जब कोई कुछ ला के देता था, जैसे मेरे यज्ञ में आ रहा है, फटाफट बुलाओ वो भाई को, उसको दो, ये आ गया आज, ये आया आज, दे दो। ये देने का संस्कार, नहीं तो व्यक्ति छोड़ता नहीं अपनी चीजों को। पर दादी को था कि दे दो दे दो दे दो। उसके बाद नेक्स्ट स्टोरी। हाँ, जब दादी के युगल को, नवल राय को ये थोड़ा निश्चित हो गया कि अब इसने वो सब छोड़ दिया है ज्ञान वगैरह, तब कहीं जाकर वो कोलकाता गया 18 मास के बाद। और जैसे ही वो वहां गया, दादी ने अपने लौकिक बाप को कहा, बुलाया और कहा कि अब मुझे यहां नहीं रहना है, मुझे अब ले चलो बाबा के पास। और अपना पैकिंग किया हैदराबाद, और पर हैदराबाद स्टेशन पर नहीं बैठी, हैदराबाद के आगे वाला जो स्टेशन था ना वो स्टेशन चुना। हैदराबाद के थोड़ा आगे वाला जो स्टेशन है नेक्स्ट, वहां से बैठ गई, कराची पहुंच गई, वहां से एक तार लिख दिया, मैं मर चुकी हूं। क्या? कौन सा तार लिखा? आई एम डेड। बहुत सारे रिश्तेदार आए समझाने के लिए कि चलो 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 घर चलो, क्यों आ गई तुम, पर दादी अब रुकने वाली नहीं है। और फिर धीरे धीरे न्यूज़ उधर पहुंच गई कलकत्ता, और दादी का पति आ गया गुस्से में उसको लेने के लिए, और वो उसको जबरदस्त, और दादी बैठी है वहाँ सिलाई का काम कर रही है, और वो दादी वो आता है और उसको जबरदस्ती पकड़ के लेके जाने लगता है नीचे। मिठू दादी की माँ, या मिठू दादी थी, उसने तुरंत पुलिस में फोन किया, पुलिस आ गई, और दादी ने पुलिस में भी जाके पहले खबर कर दी कि मैं यहाँ हूँ और मेरे खिलाफ अगर कुछ कंप्लेंट आई तो स्वीकार मत करना, वहाँ पहुँचते ही ये सब काम किए। और इसलिए पुलिस आ गई, और जैसे पुलिस आई तो उसका पति घबरा गया पति पुलिस को देखकर, और उसने कहा कि अगर तुम नहीं गई तो मैं शादी कर लूँगा। दादी ने कहा भले कर लो। वो गया और उसने शादी कर ली। चैप्टर क्लोज। कर्म बंधन से मुक्त हो गए। तो ये कहानी कहो या किस्सा या हैबिट कि अपने आप को कर्म बंधनों से अपनी ही युक्ति से मुक्त करना है। युक्ति से क्या है? मुक्ति। युक्ति लड़ानी पड़ेगी। हर एक की परिस्थिति अपनी अपनी है, हर एक के बंधन अपने अपने हैं, हर एक को देखना पड़ेगा मेरा सबसे बड़ा बंधन कौन सा है, उसको हटाना है। नेक्स्ट, क्वीन मदर थी मनमोहिनी दीदी की माँ, उसने एक बार फिर दादी को कहा कि जाके मम्मा से मिल के आओ। और दादी उस समय अपनी लौकिक की जो शॉल थी वो पहन के जो आई थी ना वो उड़े हुए थी, तो मम्मा ने कहा कि अगर लौकिक का पहनोगी तो लौकिक याद आएगा। दादी कहती ये बात मुझे लग गई, और उस दिन के बाद आज दिन तक 2019 जब तक दादी थे लौकिक का कुछ भी यूज नहीं किया। अगर लौकिक वाले कुछ देते भी थे तो वो सीधा यज्ञ में। हॉस्पिटल की ही बात है, पहले भी सुनाया था, हॉस्पिटल का दादी का बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ हॉस्पिटल में, सब ने गिफ्ट्स दिए, बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, सबके नाम, सब ने गिफ्ट दिए। तो हॉस्पिटल में सेलिब्रेशन था बर्थडे, और उसके बाद में सेलिब्रेशन था कैंसर, और हम हॉस्पिटल के वहाँ जा नहीं पाए ओपीडी की वजह से, तो वहाँ गए फिर मिलने दादी से, ज्ञान सरोवर सीधा। तो वहाँ गए तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चालू था, यहाँ जो जो मिला वो वहाँ बांटना चालू था, यहाँ इतना सब मिला। एक होता है ना मुझे गिफ्ट मिला तो मैं देखूँ क्या है, अपने गिफ्ट पर कैसा है? अधिकार होता है ना कि मुझे मिला है, काम जो बिना काम का है वो तो बांट देंगे, पर जो काम का है वो मैं रखूंगा, ये रहता है हमेशा। यहां जो मिला था बिना देखे अंदर क्या है बांटने का प्रोग्राम चालू था उधर, जैसे मेरा कुछ है ही नहीं, इतना नष्ट हुआ। हम लोग कॉलेज में थे तो जब कोई नया शर्ट ले लेता था, खरीदता था, जैसे एक ने लिया और फिर दूसरा, वहां तो हॉस्टल में ऐसा होता ना हर एक की चीज जैसे मेरी चीज है, और उसने अभी फर्स्ट टाइम पहना ही नहीं तो दूसरे ने पहन लिया उसका। लिया हमने, और हमसे पहले हमारा दोस्त, और लोग उसको कह रहे कहां से लिया, कहां से लिया, बहुत अच्छे दिख रहे हो। इतनी आग लगती थी। सभी अनुभव सुनाते थे अपना। तो यहां देखो गिफ्ट मुझे आए और बांट दिए बिना देखे, ये भी नहीं कि मेरे काम का कुछ तो होगा जो मैं रखूंगा, कुछ नहीं। तो ये महादानी की आदत है, महादान की आदत है। नेक्स्ट, कल रात को भी सुनाया था दादी बाबा की कोई लौकिक रिश्तेदार थी, किकनी बहन और दादी, इन दोनों की बहुत अच्छी जुड़ती थी क्योंकि उसको बहुत इंटरेस्ट था ज्ञान में। तो वो एक बार दोनों बैठकर मिलके गार्डन में थे और ज्ञान की चिटचाट कर रहे थे, और बाबा ने जब देखा तो बहुत खुश हुए कि दोनों बच्चियां क्या कर रही है, ज्ञान की चिटचाट। और ये आदत दादी की लास्ट तक रही। कौन सी? ज्ञान की चिटचाट करना। एक होता है लौकिक चिटचाट, एक है ज्ञान की चिटचाट, एक है मौसम की चिटचाट, पॉलिटिक्स की चिटचाट, सांसारिक व्यर्थ मीडिया, और एक है आज मुरली में क्या है, आज कौन सी पॉइंट आई है। तो कौन सी आदत डालनी है? ज्ञान चिटचाट, ज्ञान चैट। नेक्स्ट, अब आते हैं कराची। तो कराची में बाबा को तो जैसे ऑर्डर था ना कोर्ट का, हाउस अरेस्ट, मिलना नहीं, ये संस्था वो अलग अलग हो जाओ, अलग अलग रहो, क्योंकि वो जो आक्रमण हुआ था ना, वो सब लोग आए और रैम लेकर, रैम को क्या कहते हैं, वो सब टकर, वो जैसे पिकेटिंग इधर हुई थी हैदराबाद में, वैसे कराची में भी जहां वो लोग रहते थे सब तोड़ दिया था, फिर पुलिस को बुलाई थी, बुलाया था, और फिर वो पुलिस सबको लेके गई। तो वहां पर सबको अलग अलग रहना था, तो बाबा उधर रहते थे, क्रिप्टन और ये सारे परिवार, बेबी भवन, ये वो सब अलग अलग। तो बाबा कभी कभी यहाँ आते थे, तो एक बार यहाँ आए जहाँ दादी रहती थी, वो बेबी भवन, और दादी को ऐसा था कि मैं बाबा के साथ जाऊँ या बाबा मुझे रोके। और जाते समय बाबा ने जैसे उनके मन की बात जानी और कहा दादी को बैठ जाओ गाड़ी में, और अपने साथ लेके गए। रात में दादी वहीं रुकी और दूसरे दिन बाबा से मिल रही थी, और बाबा ने पूछा कोई प्रश्न है तो पूछो। दादी ने कहा मेरा गला बंद हो गया है, और बाबा ने कहा आज के बाद भविष्य में जो तुम्हारे सामने आएगा उसका गला बंद हो जाएगा। जो तुम्हारे सामने आएगा उसका गला बंद हो जाएगा, क्योंकि दादी का पार्ट 74 से कहां चालू हुआ, विदेश में, जहां एजुकेटेड लोग थे और इनका कोई एजुकेशन नहीं है, अंग्रेजी आती नहीं है, और सब वीआईपी से मिल रहे, वो कैसे कन्विंस हुए या प्रभावित हुए, ये वरदान चल रहा था साथ में। तो जो भी तुम्हारे सामने आएगा गला बंद। नेक्स्ट स्टोरी, एक अमनी माता करके थी, अम नहीं ये दूसरा, हाँ विश्वकिशोर भाव की माँ, विश्वकिशोर भाव की माँ जिसको ये लोग अम्मी कहते थे, वो एक बार सब्जियां काट रही थी। तो दादी कहती है मैं भी गई और उनके साथ बैठकर सब्जियां काटने लगी, और फिर वो अम्मी ने मुझे कहा कि बाबा ने आज जो वाणी चलाई, उस समय वाणी कितनी पेजेस की थी, 15 से 20, बाद में वो 64 से वो 4 पेजेस की काट छाट की, ये 15-15 पेजेस की वाणियाँ चलती थी। तो उसने कहा आज बाबा ने जो सुनाया तुम लिखो उसको, और दादी ने कहा ये मेरी आदत बन गई कि बाबा जो सुबह सुनाता था बाद में मैं याद करके या उसी समय लिखती थी, तो मुरली राइटिंग हैबिट। और इसने बहुत काम दिया, बहुत। एक होता है सुनना खाली, कई लोग खाली सुनते हैं मुरली, न पेन न डायरी न कुछ, ये बहुत हायर स्टेजेस है, एक रीति से देखो तो सीधा मन में नोट कर रहे जो सब याद हो जाए, पर एक है नोट करना तब मेन और फिर उसको रिवाइज करना, तो ये बहुत अच्छी आदत है। दादी ने कहा ये आदत मुझे तब से चालू हो गई, ये आदत। और दूसरी स्टोरी, ये सबको पता है कि दादी को हमेशा था कि मैं 2 साल लेट आई, क्योंकि सब लोग 36 में आ गए और दादी कब पहुंची बाद में, 38 में कराची में, इतने सारे बंधन टूटते टूटते टाइम हो गया। तो दादी को एक ही था कि मैं लेट आई, और बाबा से कहा कि मैं क्या पुरुषार्थ करूं, बाबा ने कहा वाणी को कितनी बार पढ़ो, 12 बार, और दादी ने कहा कि यदि 24 बार पढ़ू तो, 24 बार पढ़ू तो पढ़ना। तो तीनों चीजें हमने देखी कि मुरली सुनना, मुरली पढ़ना और मुरली लिखना। लिखोगे ना, ये हाथों ने जो पाप किए हैं ना वो थोड़े कम होंगे। बहुत पापी है ये हाथ, बहुत पाप किया इन्होंने, तो इसको क्या करना है, इसके पाप यदि धोने हैं तो एक ही विधि है, लिखो मुरलिया। माताएं आती है हमारी ओपीडी में, दिखाती है, हमने कहा क्या लिखा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। कितवी बार, 1,00,000 तो हो गया, अभी ये सेकंड दूसरी चालू है, 1,00,000 से भी ऊपर, कितनी लगन है, बहुत बड़ा काम है ये, 1,00,000 बार लिखना, 1,00,000 बार लिखना, तो लिखना। फिर दूसरा, इसके पहले भी सुनाया था, नेक्स्ट स्टोरी, दादी का माथा कैसे था, फिजिकली बड़ा, और बचपन में उनको चिढ़ाते थे लोग, क्योंकि ये फिजिकल ब्यूटी नहीं समझी जाती है, बड़ा सिर। तो जब ज्ञान में आई तो बाबा को सुनाया कि सब लोग मेरे माथे के बारे में ऐसा बोलते, बड़ा है। तो बाबा ने हाथ घुमाया और कहा, ये जो तुम्हारा माथा बड़ा नहीं, तुम्हारा दिमाग जो है ना बहुत विशाल है, इसमें रत्नों के अतिरिक्त तो कुछ भी मत रखना, इसमें रत्नों के अतिरिक्त तो कुछ भी मत रखना। तो दिमाग हमारा कैसा हो, विशाल साइज में ना भी हो, परंतु उसमें रत्नों के अतिरिक्त कुछ भी मत रखना। हीरे तुल्य, शिव जयंती कल सुना ना, हीरो से खेलने वाले हो। उसके बाद में संघ, दादी ने आज की मुरली में है कि संघ की परहेज रखो, संघ का बहुत असर पड़ता है, किसके साथ हम रहते हैं उस व्यक्ति का असर पड़ता है। तो दादी ने कहा, बचपन से एक आनंदी माँ थी जिसमें यज्ञ ने सबको हिंदी सिखाई, सब सिंधी थे, तो आनंदी माँ ने, आनंदी बहन ने सबको हिंदी सिखाई, तो वो एक और एक किकनी बहन, ये दो ऐसे थे कि जिनको इंटरेस्ट केवल ज्ञान योग में था। वो आनंदी माता जो थी वो जा जाकर सबको दृष्टि देती थी, योग युक्त दृष्टि, उसमें उसको बहुत इंटरेस्ट था। तो दादी ने कहा, मैंने इन दो आत्माओं के साथ दोस्ती कर रखी थी, संघ ऐसी आत्माओं के साथ करना है कि जिसको इंटरेस्ट ज्ञान में है, योग में, तपस्याओं में। नेक्स्ट, हाँ ये अनमोली माता करके एक थी जो बहुत बंधन में थी, बहुत बंधन में, उसका पति पहरेदार लगा के रखता था कि वो भाग ना जाए उधर बाबा के पास। तो दादी और ध्यानी दादी दोनों एक बार गए और दादी कहती है, मैं उसके पति को पहले से ही जानती थी, तो उसको भाऊ भाऊ, दादा दादा कह के, भाई भाई कहते हुए उसके साथ उसको मिली, उसको समझाया, उसको सिखाया, और वो एकदम ही चेंज हो गया, एकदम ही चेंज हो गया। और उसने कहा, आज से फ्री, जिस जहाँ जाना है उसकी युगल जा सकती है। और दादी ये समाचार लेकर बाबा के पास आई, ये पहली सेवा थी जैसे दादी की, कि किसी बांधेली माता को दादी ने मुक्त कर दिया। बाबा ने कहा, ये तो तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। तो ये काम बड़ा अच्छा काम है, बंधन वाली आत्माओं को बंधनों से मुक्त करना, नहीं कर सके तो सहयोग देना। नेक्स्ट, फिर बाबा ने दादी को एक काम दिया मम्मा के द्वारा, कि दादी और ये जो काम दिया, ये इतना बड़ा काम था कि उस काम की वजह से आज बहुत सारे काम हो रहे हैं। कौन सा? दादी को एक ड्यूटी दी गई यज्ञ में। कौन सी ड्यूटी दी गई आशीष भाई? असिस्टेंट बनाया गया चंद्रमणि दादी और मिठू दादी का। और ये दोनों दादियां क्या करती थी? नर्स। तो दादी को कौन सा काम दे दिया गया? नर्स का काम दे दिया गया, कि तुमको क्या करना है, आज से जो भी पेशेंट्स है उनकी सेवा करनी है। दादी कहती है, ये सेवा करने के लिए मुझे कई बार 2-2 बजे उठना पड़ता था रात को, क्योंकि बीमारी अगर टाइम देखकर थोड़ी आती है, कितने भी बजे आती है, कभी भी भागना पड़ सकता है अपना ज्ञान योग छोड़कर। तो तुरंत हमें खुद याद है कि ऐसा 24 घंटे का कोई एक मोमेंट नहीं होगा, एक टाइम 24 घंटे में का ये हमारा ही नहीं, जो भी मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए, कि जिसमें किसी एक टाइम पर पेशेंट नहीं देखा होगा, वो रात के 12 बजे, 12 बज के 10 मिनट, 12 बज के 5 मिनट, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, और कभी कभी पूरी पूरी रात निकल जाती है और अमृत वेला हो जाता है, फिर सोचते अभी क्या सोए, छोड़ो देखेंगे, नींद अपना रास्ता खुद निकाल लेगी, नींद की चिंता नहीं करनी होती। पेशेंट 11 बजे आता है, 12 बजे उसकी रिपोर्ट आती है, 1 बजे पेशेंट डिटेरेट हो जाता है, उसको वेंटिलेटर पे डालो, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, और करते करते देखो तो 3:30 बज रहे हो। अब क्या करें, अमृत वेला करें कि जाके सो जाए? अमृत वेला कर लेते, और अमृत वेले के बाद में सोना ये आदत नहीं है तो क्या करें? अब दिनचर्या चालू, पहले चिंता रहती थी कि नींद नींद नींद, अभी चिंता करना बंद कर दिया, नींद अपना रास्ता खुद ढूंढेगी। तो दादी कहती है इससे एक फायदा ये और भी हुआ, मम्मा ने आके कहा कि तुम जब पेशेंट्स को देखोगी तो पेशेंट्स का दर्द क्या होता है ये तुमको रियलाइज होगा, पेन क्या होता है, पीड़ा क्या होती है तुमको पता चलेगा। और दादी कहती है कि इस सेवा के वजह से बाबा का बार बार फोन आता था कि इस बच्चे को जाके नींबू संतरे का जूस दे दो, उसको वो दे दो, तो मेरा ये जो कांटेक्ट था ना मम्मा बाबा से, ये थोड़ा बढ़ गया। बड़ों के कांटेक्ट से लोग डरते हैं, कहते हैं दूरी रहना चाहिए, अपनी सेवा करो चुपचाप निकल जाओ, एक ये मार्ग है। दूसरा है वो सेवा है कि जिसमें बड़ों से बार बार कांटेक्ट आता है, पर इसमें फायदा यह है कि बड़ों से बार बार कांटेक्ट आते ही बहुत सारी बातें पता चलती है। कभी कभी वो खाली बैठे रहते तो बैठो उनके साथ, अच्छी बातें चल निकल पड़ती है, ऐसे ऐसे गहरे राज पता चलते हैं, बहुत डीप डीप राज। अगर किसी के सामने कहो टाइम लेके जाओ कि मुझे ये बताओ, वो बस उतना ही बताएगा जितना आप पूछोगे, और जब अनऑफिशियल टॉक होती है तब अंदर अंदर का निकलता है। तो और यही आधार था आगे चल के जानकी फाउंडेशन बना। कब कब बना जानकी फाउंडेशन? 89 सितंबर के आसपास, या 96, या याद नहीं आ रहा है हमें डेट एग्जैक्टली। परंतु ये जो हॉस्पिटल का जितना खर्चा और ये सब है, दादी को शुरुआत से रहता था कि हॉस्पिटल के लिए लंदन से पैसा आए, सेवा हो सेवा हो सेवा, हमेशा हॉस्पिटल के लिए बहुत ज़्यादा उमंग रहता था। उसका आधार क्या था? ये सेवा, नर्स की सेवा। और नर्स की सेवा करना बहुत बड़ी सेवा है, किसी पेशेंट को देखना। एक होता है मैकेनिकल, मैकेनिक होते हैं, जैसे एक सर्जन जा रहा होता है, उसकी कार खराब होती है, वो रुकता है, वहां पे कार का मैकेनिक होता है, तो कार का मैकेनिक कार ठीक करता है, और वो सर्जन से पूछता है कि काम तो मैं भी करता हूँ, काम आप भी करते हो, आप लाखों कमाते हो और मुझे तो इतने कम पैसे मिलते हैं, मैं भी रिपेयर करता हूँ, अपना शरीर भी एक इंजन है, शरीर भी इंजन है, ये भी इंजन है, मैं भी इंजन ठीक करता हूँ, आप भी इंजन ठीक करते हो, आप लाखों कमाते हो, मुझे इतने कम क्यों? तो सर्जन कहते हैं ये जो तुम इंजन ठीक कर रहे हो ना गाड़ी का, चलते हुए इंजन को ठीक करके दिखाओ, जो साफ करते हो ना इंजन को, उसको चालू कर दो और फिर करो साफ, ये काम मैं करता हूं, ये चलता हुआ शरीर है। तो पेशेंट की सेवा करना बहुत बड़ी सेवा है, और जरूरी नहीं कि डॉक्टर बन के ही करना है, बहुत सारी चीजें की जा सकती है। एक एम्बुलेंस का ड्राइवर कितनी बड़ी सेवा है उसकी, एम्बुलेंस का ड्राइवर बहुत बड़ी सेवा है, उसको सारे रास्ते पता चाहिए, टाइम पर पहुंचा देता है वो। या वो भी छोड़ो, जो दूसरे होते हैं आजू बाजू वाले, पहुंचाना उसको समय पर, पहुंचते ही तो नहीं है पेशेंट, सबसे बड़ी गलती क्या होती है, टाइम पर नहीं पहुंचते, इसलिए डेथ्स होती है और बहुत सारी चीजें होती है। नर्स, तो कितनी कहानी हो गई आज की, 19। लास्ट, एक बार दादी ने देखा कोई भाई झूठ बोल रहा है, दादी ने कहा बाबा को बताना चाहिए, पहुंच गई बाबा के पास रिपोर्टिंग करने, तो बाबा ने सुना और सुनते सुनते एकदम सीरियस हो गए, और दादी को कहा कि तुम अपने ऊपर ध्यान रखो, दूसरों की गलतियों पर नहीं। दूसरा झूठ बोल रहा है, क्या कर रहा है, इसे तुम्हें कोई मतलब नहीं, क्योंकि दूसरों की गलती सुनाने में जो एक्साइटमेंट होता है और जो खुशी कहो या फिर जैसे मैंने सुना है, क्रैक द न्यूज, ब्रेक द न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, कि जो किसी को पता नहीं वो मैं बताऊं सबको, ये जो होता है ना, एक हमेशा रहता है, इसमें एक्साइटमेंट है और वो हमें बाह्यमुखी बना देता है। इसके लिए बहुत लोग हैं, जरूरी नहीं है कि तुम ही मैसेज फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड करने वालों की लाइन लगी है इधर, फॉरवर्ड कर करके तो वापस वहीं पहुंचता है। ये भी इसमें भी पाप का भागी नहीं बनना है, किसी के अवगुण। हाँ, इसीलिए अभी तो बहुत सूक्ष्म पाप और बहुत फास्ट विकर्म बनते हैं, बहुत फास्ट, क्योंकि सब जुड़ा हुआ है संसार। तो ऐसी कितनी बातें हो गई आज की, कल हमने देखी थी 17 और आज 20 हो गई, 20 कितनी करनी है टोटल, कल 21 थी। तो ऐसी हम 104 आदतें या कहानियां या किससे देखेंगे। तो सच्चाई को अपने अंदर धारण करना है। सेंटियागो, यस सेंटियागो, सेंटियागो, वो जो सेंटियागो होता है ना, शेफर्ड होता है, एक चर्च के पीछे छोटा सा घर है, वहां रहता है, वहां स्वप्न देखता है, कहीं दूर खजाना है। कहां देखता है? स्वप्न देखता है, दूर खजाने, और खजाने की तलाश में निकलता है। और उसकी ये जो यात्रा है, बहुत सारे लोग उसको इस यात्रा में मिलते हैं, और जहां पे अंतिम जगह पर वो पहुंचता है, वहां पता चलता है खजाना वहां नहीं है, खजाना वही है एक चर्च के पीछे जहां वो रहता था ना, वही खजाना है, ये उसको पता चलता है। अच्छा, ओम शांति।
जी।